सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृप्तिदीप प्रकरण में ये विचार कर रहे थे कि वो जो चिदाभास है, वो चिदाभास अज्ञान अवस्था में उसने जो कुठस्थ के ऊपर जो आरोप किया था और अपने आप के ऊपर भी क्या उसने आरोप किया था, उस आरोप को क्या है हटाता है वो ज्ञान के द्वारा। और हटाते हुए क्या करता है वो क्षमा याचना अर्थात शरणागति, क्योंकि जो हमने आरोप किया था उस आरोप को क्या है हटा करके अपने आप को शुद्ध करना है और सामने वाले को भी शुद्ध करना है अपने प्रति, तो उसके लिए एक ही उपाय है क्षमा। हम क्षमा मांग ले, सामने वाले से हमसे भूल हो गई, हमने आपके ऊपर क्या आरोप किया है, ये आरोप किया था उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, हमें क्षमा कर दीजिए, इतने कहने मात्र से क्या हो जाता है हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है उनके प्रति और उनका भी अंतकरण अपने प्रति शुद्ध हो जाता है। तो होता क्या है इससे दोनों में एकता बनने में देरी नहीं लगती है, अब दोनों साफ हो गए एक दूसरे के प्रति। इसी प्रकार यहां चिदाभास भी जो है अपने प्रायश्चित के लिए साक्षी कुटस्थ के क्या है शरण में जाता है, यही क्या है उसका प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित करने से क्या होगा, यही होगा कि वो साक्षी रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। जब साक्षी के शरण में जाएगा, जिसके शरण में व्यक्ति जाता है उसी का ही क्या करता है अनुसरण वो करता है। तब साक्षी के शरण गया है तो साक्षी का ही अनुसरण करेगा, और स्वयं साक्षी कैसा है वो अभोक्ता है अकर्ता है, वो सच्चिदानंद रूप है, तो ये चिदाभास भी क्या है उसी तरह ही स्वीकार कर लेगा। जब स्वीकार करेगा तो धीरे धीरे उसको अनुभव होने लगेगा। इसी को लेकर के 36वें श्लोक में बता दिया था, मिथ्याभियोगा दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्धये क्षमापयन् निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः। कहते हैं कि उस साक्षी में जो असंग साक्षी है उसमें क्या है जो आरोप लगाया था उसने हटा करके क्या हो गया वो उसकी शरण में गया, वो शरणागति ही क्या है प्रायश्चित्त है। और शरणागति करने के बाद वो करता क्या है उसके बाद, मात्र शरण जाने से होता है क्या, नहीं होता है। शरण जाने के बाद उनके उसके अनुसार चलना होता है। जिसके शरण में हम जाते हैं, जैसे सभी के अपने अपने गुरु है, तो हम जिस गुरु के शरण में गए हैं तो वो जैसे कहते वैसे हम स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं। अब यहां कहते हैं अपना जो प्रायश्चित करता है चिदाभास, वो किस प्रकार प्रायश्चित करता है, जैसे लोक व्यवहार में दृष्टांत देते हैं, लोक व्यवहार में जैसे होता है उसको यहां पर ग्रंथकार क्या है रख रहे हैं। तत्रैव दृष्टांत दृष्टांतरम आह, इसको अन्य दृष्टांत से समझा रहे हैं कि कैसे वो अपने क्या है शरणागत होकर के अपने गलती को क्या है वो सुधार देता है, अपनी जो भी भूल हुई है दोष हुआ था उस दोष को कैसे हटाता है लोक व्यवहार का दृष्टांत देते हैं। आवृत्त पापनुत्यर्थम् आवृत्त पापनुत्यर्थम् स्नानाद्यावर्तयेति यथा स्नानाद्यावर्तिते यथा आवर्तयन्निव ध्यानम् आवर्तयन्निव ध्यानम् सदा साक्षी परायणः सदा साक्षी परायणः कहते हैं दृष्टांत देते आवृत्त पाप नित्यर्थम। कोई पुरुष क्या है पाप से आवृत्त हो गया पाप आ गया उसमें। अब उस पाप को निवृत्त करने के लिए शास्त्र ने जैसे कहा कि भाई पाप यदि हो गया तो उसको क्या करना चाहिए तीर्थ क्षेत्रों में जाना चाहिए गंगा स्नान करना चाहिए हवन इत्यादि करना चाहिए भगवान के नाम से दान धर्म करना चाहिए इस तरह क्या शास्त्र में कहा है। तो जब उसको लगता है कि मेरे द्वारा कुछ पाप हुआ है अब उस पाप का क्या क्षालन करना है उसको निवृत्त करना है तो जैसे जो पाप को स्वीकार करता है कि मेरे में दोष आ गया ऐसा व्यक्ति क्या करता है स्नानादियों के द्वारा अपना पाप क्या करता है क्षालन करता है। इसी तरह ये चिदाभास भी उसने जान लिया कि मेरे द्वारा गलतियां हो गई अब इस गलतियों को सुधारने के लिए मेरे लिए एक उपाय है कुठस्थ की शरणागति। तो उस जैसे जो पापी तीर्थ क्षेत्र की क्या करता है शरण लेता है और तीर्थ क्षेत्र में जाकर के वहां पर स्नान दान आदि करता है और अपने पाप को निवृत्त करता है। इसी तरह यहां पर चिदाभास जिसको लग रहा है कि अभी मुझे क्या होना चाहिए इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहिए अभी तक मेरे द्वारा बहुत सी गलतियां हो गई तो अब ये समझ में आने के बाद जो गलतियों को निवृत्त करना है तो उसके लिए कर्ता क्या है वो कुठस्थ की शरण में जाता है। शरणागति करने मात्र से क्या हो जाता है अपने पाप निवृत्त होते हैं। जैसे एक पापी तीर्थ क्षेत्र की शरणागति लेता है वहां जाकर पापों का क्षालन करता है इसी तरह चिदाभास जीव वो कुठस्थ की शरण में जाता है और अपने पापों का दोषों का वो क्षालन करता है उसको साफ करता है। टीका देख लीजिए यथा पापकारिणा पुरुषेण अवृत्त पाप अपुनुत्यर्थम जैसे कि जो पापकारिणी अर्थात जिसने पाप किया है जिस पुरुष ने और उस पाप के द्वारा क्या है उसके ऊपर आवरण आया दोष आ गया अब उसको हटाना चाहता है अपुनुत्यर्थम अर्थात हटाने के लिए पाप को हटाने के लिए अभ्यस्त पाप अपनोदाय विहितम स्नानाधिकम उन जो पाप अपने ऊपर क्या है अब आ गया है अब उस पाप को क्या है अपनोदाय अर्थात उसको हटाने के लिए क्या है शास्त्र ने विहित किया है विहितम स्नानाधिकम शास्त्र ने कहा है कि गंगा जी में स्नान करो तो तुम्हारा पाप क्षालन होगा दान धर्म करो तीर्थ क्षेत्र में रहो कुछ दिन तो ये जो शास्त्र ने विहित किया था वो उसको सुन करके समझ करके जाता है और क्या है तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के स्नान आदि वो करता है प्रायश्चित्तम प्रायश्चित्त भी करता है तीर्थ क्षेत्र में जाकर के तो उसका परिणाम क्या होता है जो उसके ऊपर पाप आया हुआ है वो क्षीण हो जाता है प्रायश्चित्तम आवर्तते उस प्रायश्चित को क्या बार बार वहां पर करता है अनुष्ठान करता है जैसे दर्श पूर्णिमा मास क्या है ये अनुष्ठान है कि जैसे वो मान लीजिए पाप हो गया तो जाइए तीर्थ क्षेत्र में अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक क्या है आपको अनुष्ठान करोगे तुम्हें क्या हो जाएगा तुम्हें पाप तुम्हारी पाप से क्या हो जाएगी शुद्धि हो जाएगी। तो दर्श पूर्णिमास जैसे एक अनुष्ठान है कि जैसे कह दिया कि तुम्हें जैसे अमावस्या से शुरू करना है, एक मुट्ठी चावल क्या करना है, एक मुट्ठी मतलब एक ग्रास चावल क्या है पहले दिन खाना है, दिन भर उतने में ही रहना है, दूसरे दिन दो ग्रास चावल, तीसरे दिन तीन चार पांच छह, ऐसा करते करते फिर पूर्णिमा को क्या है फिर एक एक घटाना है। तो ये सब क्या है अपने पापों को क्षालन करने के लिए सब साधन है। तो वो करता क्या है, जैसे वो करता है वैसे चिदाभास करता है। तो चिदाभास करेगा क्या भाई, कुटस्थ के शरण में जा करके, तो उसके विषय में बताते हैं। तथा आयम आपी, वो ये चिदाभास भी जैसे पापी करता है वैसे चिदाभास करता है। तो चिदाभास का क्या है अनुष्ठान, तो बताते हैं। चिरम साक्षिणी संसारित्व आद्यारोपण दोष परिहाराय, चिरकाल से उस साक्षी में उसने क्या किया था, आरोप किया था, आद्यारोप किया था कि ये साक्षी क्या है, भोगता है, करता है, मैं क्या हूं, पैदा होने वाला हूं, मरने वाला हूं, मैं शरीर हूं, ये सब चीजें क्या है उसने अपने आप के ऊपर और साक्षी के ऊपर भी आरोपित किए थे, उसका दोष लग गया था। उस दोष को हटाने के लिए जैसे पापात्मा वहां जाकर के प्रायश्चित करता है, स्नान आदि करता है, वैसे ये भी करता है। तो इसका थोड़ा अलग है, इसका क्या है, तो कहते हैं ध्यानम परिवर्तयन इव सदा साक्षी परायणो भवति, यही इसका अनुष्ठान है। तो चिदाभास क्या अनुष्ठान करता है अपने पापों का क्षालन करने के लिए, उस कुठस्थ का हमेशा ध्यान करता रहता है, निरंतर वो ध्यान करता रहता है, अर्थात कुठस्थ का चिंतन करता रहता है। यही इसका क्या है, प्रायश्चित है। अथवा ये कहिए कि जो दोष आया था उस दोष को हटाने का सबसे बड़ा साधन है, जैसे वहां स्नान है वैसे कुठस्थ का ध्यान है, अर्थात कुठस्थ का चिंतन। जिस चिदाभास को अर्थात जिस जीव को लगता है कि मुझे जो है अपने दोष को हटाना है, जो मैंने कुटस्थ के ऊपर दोष लगाया और अपने ऊपर भी जो दोष लगाया, उस दोष को हटाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, कुटस्थ का ध्यान करना चाहिए, अर्थात कुटस्थ का चिंतन सतत करना चाहिए, जैसे शास्त्र कहता है, शास्त्र के अनुसार उस कुटस्थ का चिंतन करना है, ध्यान करना है। तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका जो दोष है निकल जाएगा। परिवर्तयन इव सदा साक्षी परायण भवति, हमेशा साक्षी परायण ही हो जाता है। तो साक्षी परायण होने से वो क्या, उसका संपूर्ण दोष हट जाता है। आगे कहते हैं एवं साक्षी परत्वम दृष्टांत ही उपवर्णीय, अभी वो जो चिदाभास है वो साक्षी परायण हो गया, साक्षी परायण होने के बाद उसका दोष क्या हो गया, हट गया। इसके बाद होता क्या है उस चिदाभास में, उस जीव में, तो कहते स्वगुण प्रख्याने लज्जा लुत्वम दृष्टांतम आह, अब अपने भीतर जो दुर्गुण थे अथवा जो दुर्गुण है उस दुर्गुणों को क्या है वो प्रकट करना नहीं चाहता है, लज्जित हो जाता है। कौन, चिदाभास। कैसे लज्जित हो जाता है वो, कैसे वहां से अपने आप को दोष मान करके उसको छुपा के रखता है, वो दृष्टांत दे रहे। उपस्थ कुष्ठिनी वेश्या, उपस्थ कुष्ठिनी वेश्या विलासेषु विलज्जते, विलासेषु विलज्जते जानतोग्रे तथा भास, जानतोग्रे तथा भास स्वप्रख्यातौ विलज्जते, स्वप्रख्यातौ विलज्जते। कहता है उपस्थ कुष्ठिनी वेश्या, जैसे मान लीजिए कोई वेश्या है, उसको क्या है गुप्तांगमी क्या है रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, जो भी हो गया, और उसके साथ जो विलास करने वाला है उसको भी पता लग गया, तो उसके सामने वो क्या हो जाती है, लज्जित हो जाती है, वो अपने आप को छुपा के रखती है। जानतोग्रे, जो जानने वाला है उसके सामने क्या है, वो लज्जित हो जाती है। इसी तरह तथा आभास अर्थात चिदाभास, वो भी क्या है स्वप्रख्यात प्रख्यातो विलज्जते, अपने जो दोष है उस दोष के कारण उस कुटस्थ के सामने क्या हो जाता है, लज्जित हो जाता है। कौन? चिदाभास। जैसे जानने वाला व्यक्ति उस स्त्री के विषय में, वो स्त्री उसके सामने लज्जित हो जाती है। इसी तरह कुटस्थ तो जान ही रहा है कि इसने सब दोष किए थे, इसमें दोष पड़े हुए हैं, अब ये अपने दोष को सुधारने के लिए मेरे शरीर में आ रहा है, किंतु वो लज्जित हो जाता है शरण में, परंतु लज्जित हो जाता है। प्रत्याख्यात हो अर्थात सुप्रख्यात हो अर्थात अपने आप को वहां पर वो जो है पहले दुर्गुणों को वापस जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, महाराज जी हमने आपके विषय में क्या क्या मन में धारण किया था आपको नहीं कह सकते हम, बस हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपसे आपके सामने लज्जित हैं। वो कहता नहीं है। इसी तरह चिदाभास भी कुटस्थ के सामने कुछ कहता नहीं है, क्योंकि चिदाभास तो कुटस्थ तो जानता ही है, उसको क्या कहना, पर तत्पर भी सामने वाला व्यक्ति तो लज्जित तो रहेगा ना, जिसने गुनाह किया और सामने वाले के विषय में पता लग गया कि ये ऐसा नहीं है, हम व्यर्थ ही उसके प्रति क्या है गुनाह किया है, जब उसके शरण में जाता है तो वो अपने आप को क्या है हमेशा लज्जा महसूस करता है। इसी तरह चिदाभास भी क्या है कुटस्थ के सामने लज्जा महसूस करता है। आगे कहते हैं इदानीं शरीरत्रयात् विवेचितस्य चिदाभासस्य पुनः तैः सह तादात्म्य भ्रम अभावे दृष्टान्तमाह। अब हम लोगों की ये मन में शंका होगी, चलिए मान लीजिए चिदाभास को ये बोध हो गया कि मैं चिदाभास न होकर के साक्षात कुटस्थ ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये समझ में आ गया। और समझ में आने के बाद उसने क्या कर दिया, इस तीनों शरीर के प्रति जो अपना तादात्म्य हटा दिया और कुटस्थ के साथ तादात्म्य कर लिया, मतलब वो कुटस्थ और मैं हम एक ही है, अलग नहीं है। तो मन में एक शंका होती है कि फिर दोबारा इस शरीर के प्रति जैसे पहला था तादात्म्य, वैसे दोबारा तादात्म्य क्या नहीं हो सकता, मन में एक शंका होगी। जैसे पहला हुआ था, चलो अब हट गया तादात्म्य, फिर दोबारा तादात्म्य होगा क्या नहीं जैसे पहला हुआ था, ऐसे मन में शंका होगी। तो उस शंका का निवारण करने के लिए श्लोक आ रहा है, इदानीम शरीर त्रयात् विविचितस्य, इन शरीर त्रयों से अपने आप को चिदाभास ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद फिर दोबारा उस तीनों शरीर के साथ तादात्म्य होगा या नहीं, जैसे पहला था अब तादात्म्य को हटा दिया, हटाने के बाद फिर दोबारा तादात्म्य होगा क्या नहीं, वो तादात्म्य रूप जो भ्रम है उस वो भ्रम होगा या नहीं, ये मन में शंका लेकर के यहां पर उन्होंने उपस्थित किया। तादात्म्य भ्रम अभावे दृष्टांतम, कहते हैं नहीं, एक बार उस शरीर से अपने आप को अलग कर दिया उसने, वो शरीर कैसा है, मिथ्या है, तुच्छ है, जोर वाला है, और मैं तो जोर वाला नहीं हूं, मैं तो कुटस्थ स्वरूप वाला हूं, ऐसा जिस चिदाभास ने जान लिया, वो चिदाभास फिर वापस उस शरीर के साथ तादात्म्य नहीं कर सकता, वो दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छै, गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छै, प्रायश्चित्तं चरन् पुनः प्रायश्चित्तं चरन् पुनः म्लेच्छै संकीर्यते नैव म्लेच्छै संकीर्यते नैव तथा भास शरीरकैः तथा भास शरीरकैः गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छै। किसी म्लेच्छों के द्वारा अर्थात जो शूद्र है, मान लीजिए चांडाल है, उन म्लेच्छों के द्वारा किसी ब्राह्मण का ग्रहण हो गया अर्थात उसके संपर्क में आ गया। संपर्क में आने के बाद उसको समझ में आ रही है ये तो सब म्लेच्छ है, अब मैं तो अपवित्र हो गया हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। और उसने क्या कर दिया, समझ किया, समझ करके शुद्धिकरण कर दिया। करने के बाद फिर दोबारा उन म्लेच्छों के साथ संबंध करेगा, नहीं करेगा। जब एक बार समझ में आ गया कि इनके सानिध्य में जाते ही मैं अपवित्र हो जाता हूं, तो फिर एक बार तो हो गया, अशुद्ध हो गया था, मुझे प्रायश्चित करना पड़ा था, और फिर दोबारा उनके साथ संपर्क करके फिर अपने आप को अशुद्ध करके फिर प्रायश्चित की ओर चलो, ये तो बार बार की झंझट है ना। तो वो वापस क्या है, वहां पर जाएगा नहीं, एक बार वो शुद्ध हो गया फिर दोबारा अशुद्ध होने के लिए वहां पर जाएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि एक बार फिर दोबारा मैं संबंध करूं, उसके साथ स्पर्श करूं, तो फिर मुझे क्या है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो बार बार करना ये तो कष्ट की बात है ना, दुख की बात है, मेहनत है उसमें, तो वो ये समझता है कि वहां जाना नहीं चाहिए, एक बार समझना चाहिए, एक बार समझने के बाद दोबारा वापस वहां पर नहीं जाएगा। जैसे पंचकरण में दृष्टांत आता है, जो बकरी पालने वाला उसके साथ जंगल में क्या अचानक एक शेर का बच्चा छोटा सा मिल गया उसको, अब वो उसके साथ रखा उसने बकरियों के साथ, तो वो बकरी का दूध भी पिला रहा है उसको, और जैसे बकरी खा रही घास तो वो भी बकरी को देख करके वो भी घास खा रहा है। कि एक जो बड़ा शेर था उसने कुछ कालांतर में देखा, रे तो ये तो मेरा जात भाई, मेरा जात वाला है, ये बकरियों के साथ कैसे रह रहा है, इसको तो बकरी को खाना चाहिए, ये तो बकरियों के साथ घास खा रहा है। तो उसने जो है एकांत में बुलाया, अरे तुम तो शेर हो, तुम क्या घास खाने वाले थोड़ो ना हो, तुम जिनके साथ रह रहे हो तुम उसको खाने वाले हो, तुम तो उनके साथ घास खा रहे हो, तुम बकरी नहीं हो, तुम तो शेर हो, जंगल के राजा हो। तब वो कैसे माने, तो मैं कैसे मानू कि मैं इस जंगल का राजा हूं करके, तो चलो मैं तुमको दिखाता हूं, तुम और हम एक है करके, तो पानी के बगल में ले गया, देखो तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा दोनों का चेहरा एक है क्या नहीं, हाँ? अब देखो उसका चेहरा, अब तुम वो तो काली है, हाँ बोले तो बात सही है, उनका चेहरा हमारा चेहरा तो अलग है, और आपका चेहरा और मेरा चेहरा तो मिलता है, हाँ इसका मतलब हम उससे अलग है। अब एक बार समझ लिया तो अपने आप को बकरी जैसे मानेगा वो, नहीं ना मानेगा, देख लिया ना उसने कि अरे नहीं मेरा चेहरा उसका चेहरा कुछ अलग है। क्या इससे पहले उसको समझ में नहीं आता था क्या, समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि समझाने वाला था नहीं, भले ही उसने देखा होगा अपना रूप उस शेर ने पानी में देखा होगा, किंतु वो विचार ये हम दोनों अलग है, मैं जब हम अलग है तो हम दोनों का क्या सब कुछ व्यवहार खाना पीना अलग होना चाहिए, ये विचार आया नहीं। जैसे हम लोगों का आया क्या आज तक कि मैं कुठस्थ हूं, मान ली श्रवण भी कर लिया हमने कि हम कुठस्थ है, सच्चिद आनंद रूप है, ये हमने सुन भी लिया, सुनने के बाद विचार भी आया, पर तो उतना कहां हो पा रहा है, हम अलग हो नहीं पा रहे कि तो वहां तो वो अलग थे। तत्काल वहां से जो बच्चा हट रहा है क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से क्या हुआ, अलग है। तो विचार करते ही क्या वहां से हुआ, हाँ, अलग हो गया। और यहां म्लेच्छ का दृष्टांत दिया, अरे वो म्लेच्छ अलग है, मैं अलग हूं, उसके संपर्क में आने के कारण मैं दूषित हो गया। उसने क्या कर दिया, प्रायश्चित करके अपने आप को शुद्ध कर दिया, वापस नहीं मिलेगा। इसी अब वो दहार लगाने का मतलब ये कि हाँ समझ गया कि मैं बकरी नहीं हूं, अब उसमें मिलेगा वो नहीं, कहने का तात्पर्य है। इसी तरह यहां पर भी चिदाभास ये समझ गया, ये मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो फिर दोबारा तादाद में क्यों करेगा, कोई सवाल ही नहीं है। म्लेच्छ ही संकीर्यते नैव तथा भासा शरीर है, कहे हैं। जैसे म्लेच्छ के साथ वापस वो जो ब्राह्मण उसके साथ संबंध करता नहीं, इसी तरह तथा भाषा, भाषा मतलब चिदाभास शरीर कई ही, अर्थात तीनों शरीरों के साथ वो चिदाभास संबंध करता नहीं है। अच्छा चलिए मान लीजिए इसका वो संबंध करता नहीं है चिदाभास, तो वहां से हट गया और उसने क्या किया, साक्षी का अनुसरण किया। तो उसने साक्षी का जो अनुकरण किया है तो उसका विशेष फल क्या है, वो अपने मात्र पापों से निवृत्त हुआ क्या, कौन चिदाभास। जैसे पापात्मा तीर्थ क्षेत्र में जाकर के उसने अपने पापों का क्षालन किया, तो वहां तीर्थ क्षेत्र में जाकर के मात्र पापों का क्षालन करना ही मात्र प्रयोजन है क्या, नहीं है, उसको और भी प्रयोजन है। पापों का क्षालन करते हुए उसको पुण्य भी मिलने वाला है वहां पर। इसी तरह ये चिदाभास अपने दोषों को हटाने के लिए कुठस्थ के शरण में जाता है और अपने दोषों को हटाता है, तो दोष हटना मात्र प्रयोजन है क्या, तो कहते नहीं, इसका और भी बहुत बड़ा प्रयोजन है। उसके विषय में पंक्ति आ रही है, न केवलम स्व अपराध निवृत्तये साक्षी अनुसरणम, वो अपने द्वारा जो अपराध हुए थे उस अपराध को क्या है हटाने के लिए मात्र साक्षी की शरण जाता नहीं है, साक्षी का वो अनुसरण करता नहीं है। स्व अपराध निवृत्त है, अपने अपराध को निवृत्त करने के लिए इतने मात्र के लिए साक्षी के शरण में जाता नहीं है, साक्षी का वो मात्र अनुसरण नहीं करता है, उसका आगे प्रयोजन, किंतु महत प्रयोजन, उसका बड़ा महत प्रयोजन है। उस महत प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी क्या है, वो साक्षी के शरण में जाता है। वो जानता है मात्र मेरे दोष हटाने के लिए साक्षी के शरण में मैं नहीं जा रहा हूं, दोष के साथ दोष को हटाने के साथ साथ मेरा उससे और भी बहुत बड़ा प्रयोजन है, इसके लिए क्या हुआ साक्षी के शरण में जाता है। इस सिद्धि के लिए बता रहे हैं वो कैसे साक्षी के शरण में जाता है और महत प्रयोजन के लिए भी वो जाता है, उसको दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। सिद्ध्यर्थम अपि सिंह अवलोकन न्यायेन स दृष्टांतम आह, सिंह अवलोकन करते हुए क्या है दृष्टांत के सहित समझाते हैं। सिंह अवलोकन अर्थात सिंह क्या करता है, जब चलता है वो फिर एक बार नजर डालता है। इसी प्रकार ये चिदाभास भी क्या करता है, उस कुठस्थ के विषय में पूर्ण रूपेण अपनी नजर घुमाता है, वो देखता है कि हाँ इसके शरण में जाने में मुझे महत फल है, और पीछे भी देखता है कि मैंने जो कुछ किया था गलत उसका परिणाम क्या हुआ था, उसको भी देखता है और साक्षी को भी देखता है। इस अवलोकन करके एक से निवृत्त होता है और एक के शरण में जाकर के महत फल को वो प्राप्त कर लेता है। तो कैसे कर लेता है, तो श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। यो वराजे स्थितो राज, यो वराजे स्थितो राज, पुत्र साम्राज्यवांछया, पुत्र साम्राज्यवांछया, राजानुकारी भवति तथा राजानुकारी भवति तथा साक्षनुकार्ययम् तथा साक्षनुकार्ययम् युवराजे स्थितौ। अर्थात युवराज पद में जब राजकुमार स्थित होता है, पहले राजकुमार होता है, किंतु भविष्यत गद्दी का वारिस बनाने के लिए राजा क्या करता है घोषणा, अभी ये युवराज है, हमारे भविष्यत के क्या है वारिस है, ये हमारे बाद ये गद्दी पर बैठेंगे, उसको क्या कहते हैं युवराज। तो जो युवराज पद पर स्थित है कौन, राजपुत्र, वो क्या करता है तो कहते साम्राज्य वांछया, अर्थात साम्राज्य की इच्छा से कि भविष्यत में मैं अपने पिता के गद्दी पर बैठ करके इस साम्राज्य का उपभोग करूं, इस इच्छा से क्या करता है वो युवा राजानुकारी भवति। जैसे राजा ने आचरण किया प्रजा के प्रति, वैसे ही वो आचरण करता है, क्यों, क्योंकि प्रजा के अनुकूल यदि आचरण करता है राजा, तो राजा उसको क्या है प्रजा राजा मानती है, अन्यथा प्रजा स्वीकार नहीं करती है। तो प्रजा के लिए अनुकूल जो व्यवहार होता है राजा के द्वारा, वही व्यवहार उसका पुत्र युवराज क्या है वो प्रजा के साथ व्यवहार करने लगता है, क्यों, क्योंकि उसको भविष्यत में ये दिखता है मैं यदि अपने पिता के समान आचरण करूं तो भविष्यत में मुझे साम्राज्य मिलेगा, तो इसलिए वो क्या करता है उस तरह का वो आचरण करता है। इसी प्रकार ये जो चिदाभास है, ये चिदाभास मात्र अपने दोषों को हटाने के लिए शरण में नहीं जाता है, उस कुटस्थ का अनुसरण नहीं करता है, तो क्या है तो भविष्यत में वो साक्षात कुटस्थ के पद पर आरूढ़ हो जाता है। ये महत फल क्या है देख रहा है कि मैं यदि कुटस्थ का अनुसरण करूं तो मैं ही साक्षात कुटस्थ हो जाऊंगा, ये महत फल देख करके वो क्या है कुटस्थ का अनुसरण करता है, यही कह दिया। तथा साक्ष्य अनुकार्ययम्, वो क्या है साक्षी का क्या अनुकरण करता है। टीका देख लीजिए, युवराज इति राजानुकारी भवति, राजा का अनुकारी कौन, उनका पुत्र युवराज होता है। जैसे राजा इव प्रजा रंजनादि गुणवान भवति, जैसे राजा प्रजा का क्या करता है रंजन करता है, इसी प्रकार वो युवराज भी क्या करता है प्रजा का रंजन करता है, जिसका परिणाम क्या होता है भविष्यत में उसको वो गद्दी मिल जाती है, महत फल मिल जाता है। इसी प्रकार ये चिदाभास भी कुटस्थ का अनुकरण करता है, तो भविष्यत में क्या है जब ये शरीर छूट जाता है कुटस्थ रूप हो जाता है, साक्षी रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, ये महत फल के कारण वो करता है ऐसा। आगे कहते हैं कि ननु युवराजस्य राजानुसारे राजानुसरणे साम्राज्यम दृश्यते। हमें तो ये लगता है कि युवराज तो अपने राजा अपने पिता का क्या करता है अनुसरण करता है, और उस अनुसरण में तो साम्राज्य फल दिख रहा है, किंतु ये साक्षी का अनुसरण करने वाला जो चिदाभास है वो फल तो कुछ नजर नहीं आता है। उसके विषय में कह रहे साम्राज्य फलम दृश्यते, और साम्राज्य तो फल तो दिखता ही है। न एवं साक्ष्य अनुसरण, साक्षी के अनुसरण में ऐसा फल कुछ दिखता नहीं है। अतः तद अनुसरण कथम प्रवर्तते, तो उसके अनुसरण में कैसे प्रवृत्त होता है, ये क्या है शंका है कि वहां जैसे होता है वैसे यहां पर ऐसा प्रतीत होता नहीं है। चिदाभास भले ही कुटस्थ के क्या है शरण में गया है, उसके अनुसार चल रहा है, तो जो महत फल वो महत फल क्या है दिखता नहीं है, ऐसी शंका है। अतः तद अनुसरणी कथम प्रवर्तते, फिर उसके अनुसरण में कैसे प्रवृत्त होगा, फल तो दिखना चाहिए ना, तो फल दिखेगा तब अनुसरण करेगा, तो ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है, कथम प्रवर्तता इति अशंकया आह, इस शंका को करते हुए कह रहे हैं, कहते ऐसी बात नहीं है, शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कहता है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म क्या है, ब्रह्मरूप होता है, शास्त्र कह रहा है, शास्त्र वचन है, उसी को लेकर के 41 श्लोक में बता रहे हैं, यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव, यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव, भवत्येव इति श्रुतिः, भवत्येव इति श्रुतिः, श्रुत्वा तदेकचित्त, श्रुत्वा तदेकचित्त, सन को इधर लीजिए, श्रुत्वा तदेकचित्त सन, श्रुत्वा तदेकचित्त सन, ब्रह्मवेत्ति न चेतरत्, ब्रह्मवेत्ति न चेतरत्, कहते हैं ना श्रुति कह रही है, क्या है, तुम्हें भले ही नहीं दिख रहा है कि चिदाभास कुठस्थ का अनुसरण करता है तो उसको फल जो महत फल है नहीं दिख रहा है, किंतु श्रुति तो कह रही है ना, यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मरूप हो जाता है, ये श्रुति कह रही है, महत फल है उसका। श्रुत्वा तद एक चित्तः सन, ये सुनकर के क्या है वो एकाग्र हो जाता है, किसमें, उस कुठस्थ में, एक चित्त हो जाता है, मात्र अपने चित्त में उस कुठस्थ को ही रखता है, उस कुठस्थ के सिवा और किसी का चिंतन वो करता नहीं है। सन ब्रह्मवेत्ति, उस वो ब्रह्म को क्या है अपने रूप में, वो ब्रह्म मैं ही हूं, इस रूप में क्या है वो जानता है, न च इतरत, अन्य किसी को भी वो जानता नहीं है, किस रूप में, अपने रूप में। अब किसको जान रहा है, उस कुठस्थ ब्रह्म को अपने रूप में जान रहा है, अर्थात वो कुठस्थ ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा क्या है वो अनुभव कर रहा है, ऐसा कौन कहता है, श्रुति कहती है, अन्य किसी का भी वो चिंतन करता नहीं है, अन्य किसी का वो अनुसरण करता नहीं है, तो हमें श्रुति के ऊपर क्या है विश्वास करना चाहिए। जैसे लोक व्यवहार में होता है कि आपको क्या है 6 महीने की गारंटी वारंटी है, तो तुम ले तो ले लो, पहले 6 महीने के पहले यदि कुछ खराबी हो तो हम बदल के देंगे, तो हम उस पर विश्वास करते हैं ना, तो ये तो शास्त्र है, शास्त्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए। अच्छा वो बात छोड़ दीजिए, जो माता पिता अपने पुत्र को लिखाते पढ़ाते हैं क्या देख करके पढ़ाते हैं, भविष्य ना, नहीं हमारा पुत्र को अभी पढ़ाएंगे तो आगे चल करके डॉक्टर होगा, अच्छा डॉक्टर होगा तो क्या होगा, फिर हमारे हमारी क्या बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब भविष्य में हमारी ये सेवा करेगा ये मान करके क्या है वो कर रहा है, वह किसी ने कहा तो नहीं ना उसको, वो तो अपने ही मन से क्या किया, उसने निर्णय किया कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा तो मेरी बुढ़ापे की व्यवस्था हो जाएगी, ये अपने मन से मान करके कर रहा है, वहां किसी ने कहा नहीं, यह तो शास्त्र कह रहा है जो कि अनादि है, अनादि शास्त्र जो कह रहा है वो तो झूठ तो नहीं बोल सकता ना, तो शास्त्र कह रहा है इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो भी बोध होता है आत्मा का ब्रह्म का वो हमें शास्त्र के द्वारा ही होता है, स्वतः अथवा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बता करके नहीं होता है, मात्र एक उस ब्रह्म को क्या है, प्रतिपादन करने के लिए, समझाने के लिए, प्रत्यक्ष करवाने के लिए मात्र शास्त्र ही वचन है, दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा जाता है औपनिषद पुरुषः, उपनिषदों के द्वारा ही उस पुरुष को आप जान सकते हैं, दूसरा आपके पास कोई उपाय नहीं है। बाकी तर्क तो देते हो बात अलग है, किंतु मुख्य हमारे लिए वेद ही है। इसलिए कह दिया, श्रुति कह रही है कि क्या है, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्मरूप हो जाता है। इसलिए वो क्या है, चिदाभास कुठस्थ ब्रह्म को क्या है, ब्रह्म का अनुसरण करता है, इसलिए वो ब्रह्मरूप हो जाएगा। इसमें क्या संशय, आपको संशय नहीं करना चाहिए, विश्वास कर लो। टीका देख लीजिए, य इति स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। कहते हैं श्रुति का प्रमाण दे रही, देखिए श्रुति कह रही है, स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो वहां कौन, चिदाभास तत्परम ब्रह्म वेद, उस ब्रह्म में तत्पर होते हुए क्या हो जाता है, उस ब्रह्म को जान करके ब्रह्म रूप हो जाता है, श्रुति कह रही है। नास्य अब्रह्मविद कुली भवति, और ऐसी कुठस्थ को ब्रह्म को जानने वाला जो साधक है, उसके कुल में, जो ब्रह्म को जानता है उसके कुल में कोई भी अज्ञानी पैदा होता नहीं है। कितना बड़ा फल है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, यदि वो ब्रह्म ज्ञानी गृहस्थ हो, अथवा वो ब्रह्म ज्ञानी मान लीजिए गृहस्थ नहीं है, तो उसके शिष्य भी होंगे। तो चाहे शिष्य हो चाहे अपनी संतान हो, वो अज्ञानी होती नहीं है, ये शास्त्र कह रहा है। नास्य अब्रह्मविद कुले भवति, अज्ञानी पैदा होते नहीं है। और क्या होता है, तरति शोकम, वो शोक से तर जाते हैं। तरति पापमानम, वो पाप से तर जाते हैं। गुहा ग्रंथिभ्यो हो विमुक्तो अमृतो भवति। श्रुति कहती है कि इस गुहा ग्रंथि से क्या है, वो अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ग्रंथि उसकी समाप्त हो जाती है। अज्ञान रूपी ग्रंथि, संशय रूपी ग्रंथियां सब समाप्त हो जाती है जानने के बाद। तो होता क्या है, विमुक्त हो, विमुक्त होकर के अमृतो भवति, वह अमृत रूप हो जाता है, श्रुति करे। इति श्रुतौ ब्रह्म भावादि रूपस्य फलस्य सूर्यमानत्वात्। ऐसा क्या है, जो श्रुति में सुना गया है कि ब्रह्म भावादि रूपस्य फलस्य, ये ब्रह्म भावादि रूप जो फल है वो सुनता है, कौन, साधक चिदाभास सुनता है कि श्रुतियों में ऐसा ऐसा कहा है। वो सुन करके क्या करता है, उसकी इच्छा करता है, और उसकी इच्छा करके उस फल के लिए जो जो आचरण बताए वो आचरण को करता है, उन भावनाओं को करता है। सूर्यमानत्वात् तत्फल वांछया, उस फल की इच्छा से क्या करता है, साक्षी अनुसरणे प्रवर्तनम, वो साक्षी के अनुसरण में क्या, वो प्रवृत्त होता है। युक्तम इति, ये ठीक ही है कि वो साक्षी का अनुसरण क्यों करता है, क्योंकि महत फल है। जैसे एक युवराज अपने पिता का अनुसरण करता है, क्यों, उसका वहां पर महत फल है। इसी तरह श्रुति भी कहती है, अथवा पिता ही कहता है उस युवराज से, देखो बेटा भविष्य में तुमको राजा बनना है, तो तुमको यदि राजगद्दी का उपभोग लेना है तो तुमको मेरे जैसा आचरण करना पड़ेगा। तो उस राज उपभोग का अनुभव किया है क्या, वो नहीं किया, किंतु उस उपभोग के लिए क्या करता है, वो अपने पिता का अनुसरण करता है। उसी तरह यहां पर भी है, जैसे पिता ने शब्दों के द्वारा कह दिया कि जैसे मेरा जैसा उपभोग लेना है तो मेरे जैसा अनुसरण करो, मेरा आचरण करो, तो उस शब्द के द्वारा बताया, अनुभव तो किया नहीं कि राजभोग कैसा होता है, वो मात्र देख रहा है दृश्य, परंतु उपभोग तो नहीं है। तो जैसे पिता के वचनों को क्या करता है, स्वीकार करके, विश्वास करके आचरण करता है, इसी तरह साधक चिदाभास वो क्या करता है, श्रुति वचन पर विश्वास करता है और अनुसरण करता है, उसका फल उसको मिलता भी है। ननु ब्रह्म ज्ञानेन ब्रह्म भाव प्राप्तो चिदाभासत्वम इव विनश्येत, अतः स्वविनाशाय कथम प्रवर्तत। ये प्रश्न करते हैं कि शंका होती है इनको कि ब्रह्म ज्ञान मान लीजिए हो गया, किसको? चिदाभास को। तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, तो ब्रह्म भाव को प्राप्त जब होगा तो अब उसका चिदाभासत्व तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और कोई भी अपने आप को नष्ट करके दूसरा क्यों होना जाएगा? वही कह रहे चिदाभासत्व विनश्यत, उसका चिदाभासत्व तो नाश हो जाएगा। अतः स्वविनाशाय कथम प्रवर्तत, अपने विनाश के लिए कोई प्रवृत्त होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर ये थोड़ा सा अलग सी बात लग रही है कि कोई भी अपना विनाश करके दूसरी रूप में क्यों जाना जाएगा? लोक व्यवहार में ऐसे ही होता है, अपना विनाश करके कोई जाना चाहेगा? नहीं ना, अपना विनाश न होते हुए दूसरी रूप में वो आना चाहता है, अपना विनाश करके नहीं जाना चाहता है। तो यहां कहते हैं उसका तो विनाश हो जाएगा, तो अपना विनाश करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करने की चेष्टा क्यों करेगा? उसके विषय में ये श्लोक बोलेगा, उसके विषय में कल करते हैं। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।